ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ श्रुतात्मने नमः सम्यक् दर्शन चरण गुण पायकु कर्म की पाय केवल ज्ञान उपाय प्रभु भये भजो शिवराय जिन वाणी के ज्ञान ते होत तत्व श्रद्धा चरण धारी केवल पावे पद निर्वाण नेमि चंद आह्लाद कर माधव चंद प्रधान नमो जासौ जासते जाने निज गुण थान लब्धि सार को पाय के करि कैक्षपणासार हो है प्रवचन सार सो समय सार अविकार। यहां हम भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार जो चार अनुयोग है उनमें से कर्णानुयोग के आधार से जीव का और कर्म का स्वरूप देख रहे हैं। कल हमने थोड़ी बातें देखी थी, उसको देखते हुए फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कितने ही शब्द हमारे लिए नए हैं। जब पहली बार सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है ये हमें कुछ नहीं समझता, ये अपने बस की बात नहीं है, इसलिए हम उसको छोड़ देते हैं। परंतु ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी हम यहाँ रहते हैं तो कितनी नई नई बातें सीखते हैं। ये कंप्यूटर वगैरह कहाँ था पहले, आजकल आप लोग उसमें कितने एक्सपर्ट हो गए, हमें उसमें कुछ नहीं समझता, ख्याल है ना। तो हम जिस बात से थोड़ा यूज्ड टू हो जाते हैं, जिसको कहेंगे वो अभ्यासित हो जाते हैं, उससे वो बातें हमारे ख्याल में भी रहती है और समझ में भी आती है। हमें बस केवल उसको सुनना है, और कितनी बातें हम बार बार दोहराते हुए आगे बढ़ेंगे, कोई बात ख्याल में नहीं आती या पहले सुनी हुई उसका अर्थ एकदम ख्याल में नहीं आता, बिल्कुल बीच में पूछ सकती है कि मैं ये हमने देखा तो था मगर ये भूल गई। या कभी कभी ऐसा भी होता है, कोई शब्द हम इतनी बार उसको वापर दे कि हमें तो सहज रूप से हम उसको यूज करते हैं और आपका उसका मीनिंग सही मालूम नहीं हो, तो फिर हम उस पर ही विचार करते रहते हैं, फिर दूसरी बात छूट जाती है। बीच में आप पूछ सकते कि ये शब्द का अर्थ मुझे नहीं समझा, आप समझाना। हमने कल देखा था कर्म, ये हमने सुना है, कर्म ये नाम तो हमने बहुत सुना है, क्योंकि जैनी है तो हमने ये कर्म का उदय है, ये हम कर्म को बांधते हैं, कर्म से मुक्त होकर फिर हम सिद्ध होते हैं, ऐसी बातें हमने सुनी तो है। तो कर्म नाम से तो हम परिचित है, परंतु उससे जो कुछ उसका एग्जैक्ट मीनिंग है, उसकी जो कोई अवस्थाएं बनती है, जैसे कर्म का बंद होता है फिर वो सत्ता में रहता है, वो उदय में आता है, उसमें अलग अलग टाइप के कर्म होते हैं, उन सब की हम यहाँ इन्फॉर्मेशन पहले लेंगे। और वो इन्फॉर्मेशन हमारे लिए कैसे कार्यकारी है, क्योंकि हमारा प्रत्येक का कल हमने देखा था प्रयोजन यानी हेतु क्या है, मोक्ष की प्राप्ति। क्यों? क्योंकि वह जीव की अवस्था है, मोक्ष कोई प्लेस का नाम नहीं है। हम किसी को पूछते मोक्ष कहाँ है, अब इन कहाँ है मोक्ष, ऊपर है ना। हाँ, क्योंकि जो मुक्त हुए हैं वो वहां रहते हैं, इसलिए हम कहते हैं मोक्ष ऊपर है। परंतु मोक्ष ये क्या है पहले हमने देखेंगे, हम पहले उसको मोक्ष है क्या, तो मोक्ष ये जीव की अवस्था है, ख्याल है ना। क्योंकि हम कहते हैं ये मुक्त जीव, ये सिद्ध जीव है, ये मुक्त हुए है, मोक्ष यह जीव की अवस्था, अभी हम उसको टर्मिनोलॉजी अवस्था इतना ही कहेंगे, फिर वो पर्याय क्या होती है वो सिखाएंगे सब। अभी हम कैसे हैं, कल हमने देखे थे कर्म से बंधे हुए अवस्था में हैं। जीव और कर्म कब से बंधे हुए हैं? अनादि से। तो ये बंध ये क्या है कि जीव की अवस्था है, जीव की अवस्था में अभी मिथ्यात्व राग द्वेष आदि सब चल रहा है और उसके कारण वो उसी में अटका है। तो ये जीव की बंध अवस्था है। जब कहेंगे हम ये सिद्ध हुआ तो ये क्या हुआ, जीव की मुक्त अवस्था होगी। तो मोक्ष ये क्या है, जीव की मुक्त अवस्था, ये जीव की अवस्था है। और वो अवस्था कैसी है तो अनंत सुखमय अवस्था है। जैसे हमें क्रोध आया तो ये क्रोध क्या है, जीव की अभी ऐसी अवस्था है जिसमें क्रोध चल रहा है तो हम कहेंगे ये क्रोधी है। जब लोभ चल रहा है क्या कहेंगे, ये लोभी है। तो ये अवस्था में है। अवस्था का अर्थ होता है वो अवस्था पलट कर दूसरी अवस्था हो सकती है। जैसे मैंने बंगड़ी पहनी है, ये सोने की बंगड़ी रूप अवस्था चल रही है तो ये अवस्था पलट सकती है कि नहीं सकती है? पलट सकती है, क्योंकि हमें वो डिजाइन का कंटाला आया बहुत दिन पहने हुए, हम कहेंगे अभी हम डिजाइन बदल देंगे, दूसरा कुछ बताएंगे, या वो चेंज करके उसका हार भी बनाएंगे, चलेगा। तो सोना कायम रहते हुए अवस्था पलट जाती है। तो हमारी, हम जीव है, हम जीव रूप से तो कायम रहेंगे, कब से कब तक, अनादि काल से तो हम जीव ही है और अनंत काल तक जीव ही रहने वाले हैं। और उसमें क्या गुण होते हैं क्या, उसकी चर्चा हम पारिभाषिक शब्दों के आधार से देखेंगे। परंतु हमारी जो बंध अवस्था है अभी वर्तमान में, राग द्वेष रूप अवस्था हो रही है, और कल हमने भगवान की अवस्था कैसी होती है देखी, हमने उसके लक्षण देखे थे कल, याद है? भगवान हम जिनको कहते हैं परमात्मा, उनके दो लक्षण देखे थे कल, किसको याद है?
राग और द्वेष रहित।
हाँ, राग और द्वेष रहित, बहुत अच्छा, जिसको कहेंगे वीतराग। और दूसरा लक्षण क्या देखा था, सर्वज्ञ। हाँ, अब आज बहन बोल नहीं रही है क्योंकि उनको हमने मौन दिया है। वो सामायिक लेके बैठी अभी मौन लेके, हाँ, क्योंकि वो चाहती है कि बाकी लोग प्रयत्न करें, ख्याल है ना, जो चुप बैठे वो जानते नहीं, वो बात नहीं है। परंतु हम जब बोलने की आदत डालेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। तो सर्वज्ञ और वीतराग हम अभी कैसे है? अवस्था में हम कैसे है, अल्पज्ञ है, थोड़ा जानते हैं, और वो सब कुछ जानते हैं। और हम कैसे अभी, रागी द्वेषी है, पर्याय में कषाय चलते हैं ना, और वे कैसे, पूर्ण वीतराग है, राग से द्वेष से रहित पूर्ण वीतरागी। तो हम दशा में ऐसे है रागी द्वेषी, हम उस रूप हुए नहीं है, दशा से हम सेपरेट हैं। जैसे सोना बंगड़ी रूप पूर्ण रूप से नहीं हुआ, वर्तमान में वो सोने रूप है और उसकी अवस्था बदलकर अन्य हो सकती है, वैसे हम अभी जीव है, वर्तमान में रागी द्वेषी और अल्पज्ञ है। ये हमारी अवस्था पलट कर, हमारी अवस्था कैसी, मुक्त है ना, वीतरागी और सर्वज्ञ हमारी अवस्था हो सके। तो ये अवस्था बाहर से आएगी कि नहीं आएगी, हमारा प्रश्न है। अंदर से आएगी ना, वो सोने की अवस्था सुनारने की कि नहीं, उसका निर्णय हम बाद में करेंगे। हा? वो सोने में से आई क्या, सोनी सोनार आया, सुनार उसने कर दी, उसकी बात तो हम बाद में नक्की करेंगे।
सुनार निमित्त है।
हाँ, वो निमित्त क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, हम सब देखने वाले। तो हमारे में ये शक्ति विद्यमान है तभी वो प्रकट हो सकती है, इनका हम अभ्यास करने वाले हैं। अभी वर्तमान में तो हम यहाँ कर्म के आधार से ये बातें देखेंगे कि हमारी इतनी शक्ति है वीतराग सर्वज्ञ होने की, उनकी प्रकट हुई और हमारी क्यों नहीं हुई है, तो उसमें कैसे क्या निमित्त बन रहे हैं, कैसी हमारी अवस्था हो रही है। देखो, यदि हम अवस्था का ज्ञान नहीं करेंगे, क्या कहा, अवस्था में मलिनता है, अल्पज्ञता है, उसका अगर ज्ञान नहीं करेंगे और हम पूर्ण वीतराग हो सकते हैं इसका भी हमें ज्ञान न हो तो हम उसका प्रयत्न नहीं करेंगे। श्रद्धा में क्या लेना है, कि मैं तो स्वभाव से शुद्ध हूं और पर्याय में शुद्ध हो सकता, पर्याय ने अवस्था, जैसे वस्त्र मलिन हो गया तो क्या मलिनता उसका स्वभाव हुआ कि नहीं हुआ?
नहीं,
क्यों? मलिन अवस्था होते हुए वस्त्र भिन्न है और वो मैल है वो भिन्न है। ज्ञान तो कराया क्या कि वस्त्र मलिन है, हम उसको मलिन है ही नहीं ऐसा कहीं, नहीं नहीं हमारा वस्त्र तो शुद्ध ही है तो हम उसको क्यों साफ करेंगे, क्यों उसको लॉन्ड्री में डाल के पूरा स्वच्छ करेंगे? क्योंकि हमने उसी को शुद्ध मान लिया है, उसी को स्वच्छ मान लिया, तो पहले में पहले जो मलिनता है उसका ज्ञान भी कराया जाता है। दूसरी बात ये श्रद्धा में लेना है क्या कि कपड़ा तो शुद्ध है और मैल जो है, मल जो है वो उससे भिन्न है, ये श्रद्धा में लेना है। फिर जो अभी अवस्था उसकी मलिन है उसको कैसे, जो श्रद्धा में लेगा तो वैसा प्रयत्न करेगा और जो भिन्न है उसको भिन्न कराएगा। ऐसे ही जीव के बारे में समझना। अभी यहां हमारे शुद्धता कराने वाला कोई अन्य है नहीं, ना कर्म हमको थोड़ी सहूलियत देगा, ना कोई भगवान है कि जो हमारे सारे पर्याय पलटा देगा। वो क्यों नहीं दे सकता, दे सकता है या नहीं दे सकता, उसकी चर्चा हम करने वाले हैं। थोड़े एक 8-10 लेक्चर होते हैं ना, तब तक आपके बहुत सारे प्रश्नों की जो उलझन या हमारी जो कल्पनाएं होती है अनादि से, उसमें हमें ही लगेगा नहीं हम अभी इस पर विचार करना चाहिए और विचार करके हम स्वयं उस डिसीजन तक पहुंचना चाहिए। किसी ने बताया हुआ हमारे लिए काम नहीं करेगा। तो यहां हम देख रहे हैं कि ये जो जीव जो है वो अनादि से ही बंधी हुई अवस्था में पाया जाता है, किसी अन्य ने उसके कर्म के साथ बंध नहीं किया है। दूसरी बात, हर समय यह जीव मोह राग और द्वेष कर रहा है, वो भी क्यों करता है उसको भी देखेंगे, और उसके कारण क्या हो रहा है, नए कर्मों का बंध हो रहा है। अब जो सर्वज्ञ भगवान है वीतरागी, अभी हम सिद्धों की बात करेंगे, सिद्ध भगवान कुछ राग द्वेष कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे हैं? उनके पुराने कर्म तो सब खत्म हो चुके हैं, क्षय हो चुके हैं, अब वो नया राग द्वेष भी नहीं कर रहे हैं और उनके नया कर्म का बंध भी नहीं हो सकता, तो भी वो अनंत काल तक ऐसे के ऐसे सुखी रहेंगे। तो हमें ऐसी अवस्था प्रकट करनी है, ये हमारा प्रयोजन है। तो ये अवस्था कैसे प्रकट होगी, तो अभी अवस्था में हमें बंध है, मुक्त अवस्था प्राप्त करनी ना, अभी अवस्था में बंध है तो ये बंध किस प्रकार हो रहा है उसकी यहां हम चर्चा कर रहे हैं। तो हमने देखा था कि जो बंध होता है उसको चार प्रकार से हम या बताते आचार्यों ने, ये महावीर की जो वाणी है उसी को आचार्यों ने ग्रंथ रूप से लिख के रखी, क्योंकि पहले के जमाने में बहुत बुद्धि थी तो मौखिक यानी सारा उपदेश सुनाते थे और वो फिर याद हो जाता था, इतनी बुद्धि थी। बाद में ये ग्रंथों की रचना हुई, ग्रंथ भी नहीं समझते तो उसके और आसान करके समझाया, हमारे स्कूल के बुक्स होते हैं ना तो उसमें फिर वो गाइड आते हैं उसके साथ। ऐसे आचार्यों ने करुणा करके हमें ये सारी बातें समझाई है। अब ये हमने जो बंध अनादि से ही बंधा हुआ है और नया बंध हर समय चल रहा है, देखो इसके लिए एक उदाहरण देखते हैं कि एक बड़ी टांकी है पानी की, क्या कहते हैं पिम टैंक हो या अपने घर का जो कुछ है, एक टैंक ले लो, तो टैंक में फुल वाटर इज फुल, वो टैंक इज फुल विथ वाटर, उसमें क्या है 5 नलों से पानी आ रहा है ऊपर की ओर से और नीचे की ओर से 5 नलों से बाहर निकल रहा है, तो मुझे बताना वो टैंक कब खाली होगा? हाँ
जब ऊपर का बंद करेंगे।
हाँ, जब तक वो खुला है और नीचे का भी खुला है तब
नहीं,
तब वो खाली नहीं होगा। तो उसके लिए मार्ग क्या है, ऊपर का बंद करना चाहिए और नीचे का जब बंद हो जाएगा तो आना कम हो जाएगा, फिर बंद हो जाएगा और नीचे का अधिक मात्रा में खोल दो तो जल्दी निकल जाएगा, तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो टैंक पूरा खाली हो जाए। हमारा ऐसा ही है अनादि से, ऑलरेडी वो कर्मों से जीव का बंध है। ये पांच नल कर हमने देखे थे, याद है किसी को, जिनके द्वारा बंध हो रहा है। हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हाँ देखो पांच इंद्रिया माने ना, वो तो जानने में निमित्त है, पर हम ज्ञान करके नहीं रुकते। जैसे हमने जाना ये लाल कलर है, इतने में रुकते हैं कि उसमें राग द्वेष चलता है। अरे थोड़ी शेड अलग होती तो अच्छा दिखता है। ये लाल क्यों लगाया, हरा क्यों नहीं लगाया, तो उसमें हमारे साथ में साथ राग द्वेष चलते हैं। ये अच्छा बुरा क्यों लगता है, क्योंकि वहां मिथ्यात्व चल रहा है। तो ये बताए ना पांच कारण है, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और ये योग। इन पांच नलों से वो आश्रव चल रहा है, और हर समय जितने कर्मों की स्थिति पूरी हुई है, ड्यूरेशन कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ है, तो स्थिति पूरी होने पर कोई कर्म जीव के साथ नहीं रहते, वो चले जाते हैं। और जब चले जाते हैं तब उसका फल मिलता है। जीव के साथ सत्ता में पड़े तो कोई फल नहीं मिलता। क्या कहा, बंधने के बाद कितने ही काल तक सत्ता में पड़े रहते हैं तो उसका कोई फल नहीं मिलता। बिन ऐसे आगे आइए यहाँ पर। हाँ क्यों, आपने ऐसा कोई जाना है कि जिनकी सत्ता में कुछ पड़े हैं, बहुत पुण्य प्रकृति और फिर भी उनके ऊपर संकट है, मालूम है डाली? हाँ बोलो।
तीर्थंकर।
कौन से तीर्थंकर? अरिहंत।
सॉरी,
देखो देखो पार्श्वनाथ तीर्थंकरों की अभी हम बात करेंगे, वो तो सबको स्टोरी मालूम है। वो जब मुनि अवस्था में थे ना तब उनके उपसर्ग हुआ। केवल ज्ञान होने पर किसी का उपसर्ग नहीं होता, ये ऐसा नियम है। तो पारसनाथ भगवान अभी गर्भ कल्याणक हुए थे, यानी वो तीर्थंकर प्रकृति बांध कर आए थे। कहां से आए थे, स्वर्ग से आए थे, वहां भी तीर्थंकर प्रकृति बांध रहे थे। तो स्वर्ग में तो कुछ बिगिनिंग नहीं होती तीर्थंकर प्रकृति बांधने की, उसके पूर्व भव में उन्होंने शुरुआत की थी बांधना। तो तीन भवों में इतनी तीर्थंकर प्रकृति बांधी थी, वो सत्ता में थी। और उसका उदय कब होता है तीर्थंकर प्रकृति का, अभी आप बताना बे। तीर्थंकर प्रकृति का उदय हाँ जब केवल ज्ञान होता है। अभी ये मुनिराज है, अभी तो केवल ज्ञान नहीं हुआ था और उन पर उपसर्ग चल रहा था। तो तीर्थंकर प्रकृति और अन्य इतनी पुण्य प्रकृतियां सत्ता में थी ना, तो सत्ता में थी तो उसका कोई उदय नहीं होता है, उसका कोई फल नहीं मिलता। फल कब मिलता है, जब वो निकल जाते हैं, परमाणु छूट कर चले जाते हैं, जिसको कहते हैं उदय होना। तो उदय के काल में उसका फल मिलता है, क्योंकि सत्ता में तो अनंत अनंत कर्म परमाणु पड़े, तो कर्म का उदय आना ही कर्म का फल है, उसकी चर्चा भी हम करेंगे। तो हमने कल चार प्रकार से बंध देखे थे। उजाला आपको याद है चार प्रकार के बंध? आई डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम इट, यू कैन ट्राई। प्रकृति कहा था हमने, प्रकृति बंध, दूसरा प्रदेश बंध, या पहले प्रदेश को कोई बात नहीं, तीसरा स्थिति बंध, और चौथा अनुभाग बंध। इसका अर्थ भी हमने देखा था, जो प्रकृतियां हैं, ये जो कर्म जो है उसके हम देखेंगे अभी यहाँ दो विभाग करके। तो उसके नेचर अकॉर्डिंग टू देयर नेचर, उसके आठ अलग अलग नाम बताए, इसको कहते हैं प्रकृति। तो ज्ञानावरण प्रकृति, दर्शनावरण प्रकृति आदि जो उनका बंध होना, उसको कहेंगे प्रकृति बंध। प्रदेश बंध में हमने देखा था एक समय में जितने नंबर ऑफ परमाणु बनते हैं कर्म के, उसको कहते हैं प्रदेश बंध। जब बंध होता है तब यह निश्चित होता है वो कितने काल तक जीव के प्रदेशों में रहेगा, यानी बंधा हुआ रहेगा, उसको कहेंगे स्थिति बंध। और जब बंधा है उस टाइम जैसे राग द्वेष के परिणाम है, उतनी उसमें इंटेंसिटी फल देने की शक्ति पड़ती है, तो उसको कहते हैं अनुभाग बंध। बंधने के बाद उसमें कुछ कुछ प्रोसेसेस होते रहते हैं, उसकी चर्चा तो हम जैसे यथाक्रम से आएगी तब करेंगे। परंतु बंधते समय ये जो चार प्रकार से बंध होता है, अब उसमें से हम एक एक की बात करेंगे। जब हम प्रकृति बंद कहते हैं तो ये कर्म जो है, इन जनरल सामान्य से कहेंगे तो हम कहेंगे कर्मों का बंद हुआ, परंतु उसके जब सब डिविजन्स करेंगे कर्म बंधा है तो कौन कौन के प्रकार के कर्म बनते हैं, तो उसके दो मेन डिविजन्स हम कहेंगे, एक है घाती कर्म और दूसरा है अघाती कर्म। उजाला सुना आपने, एक क्या है घाती कर्म और एक अघाती कर्म। घात यानी घाते छे, कोने घाते छे,
आत्मा के स्वभाव,
आत्मा के स्वभाव का। तो क्या स्वभाव का घात एंड हो जाता है?
नहीं,
स्वभाव का कभी नाश नहीं हो सकता। देखो देखो, स्वभाव किसको कहना उसको पहले देखते हैं। अग्नि का स्वभाव क्या है? उष्णता। तो अमेरिका की अग्नि कैसी है? उष्ण है। और वो हम नॉर्थ पोल पर चले जाएंगे, वहां की अग्नि वो भी उष्ण है। अभी पंचम काल चल रहा है, मान लेते 2000 और कितना 7 चल रहा है ना, तो 1007 में अग्नि कैसी थी? उष्ण ही थी। और आज से 5000 वर्ष के बाद वो भी, उसी को हम स्वभाव कहते हैं कि जो कभी नष्ट नहीं होता, ना काल में कोई अन्य काल में अन्य स्वभाव था और काल बदलने पर स्वभाव बदल गया, ऐसा नहीं होता, उसको स्वभाव नहीं कहते। दूसरी बात, किसी एक क्षेत्र में स्वभाव अलग है और दूसरे क्षेत्र के जीव का स्वभाव अलग होगा, ऐसा नहीं हो सकता। ये अग्नि में उष्णता उत्पन्न की किसने? उजाला, यू कैन थिंक अबाउट इट। माय क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नेचर ऑफ अग्नि? अग्नि मीन्स फायर। फायर इज, हाउ इज इट, कोल्ड और हॉट?
हॉट।
सो हु हैज मेड इट हॉट?
Nobody.
Itself. It's a nature.
Right.
So, उसको कहते स्वभाव, its own character, its own characteristic you can call it. So, nobody has created it. वो कब से है? Since when it is? अनादि. You can say अनादि. तो हमने देखा, स्वभाव को कोई क्रिएट नहीं कर सकता, स्वभाव अनादि से होता है। दूसरा पॉइंट, अनादि से है तो कब तक रहेगा? अनंत काल तक रहेगा। अनंत है ना, नो एंड, किसी ने बनाया नहीं ना वो, अनादि अनंत है, किसी ने बनाया नहीं है। जिसको कहते स्वतः सिद्ध है, स्वयं से है, स्वयं से बना है, ऐसा भी नहीं कहेंगे। इफ वी से इट इज सेल्फ क्रिएटेड, देन क्रिएशन मीन्स देर इज अ बिगिनिंग। There is no beginning.
But there's no beginning. I mean, wouldn't it would have to have started somewhere, though, right?
Agni has started, but agni garam hai. Agni ka garam pana starting nahi hai. Nahi, aisa manna padega. Pehle agni thandi thi, baad mein garam hui. Origin kab kahenge? Pehle thandi thi, baad mein garam hui, to hum kahenge origin hua. Jaise chai banai to hot thi. अब बाद में वो ठहर गई ना, हम क्या कहते हैं, ठंडी हो गई। तो ठंडी पने को बिगिनिंग है, वो अवस्था में हो सकता है। हम अग्नि की बात कर रहे हैं, दिस इज अ एग्जाम्पल। अग्नि इज नॉट द्रव्य, पुद्गल इज अ द्रव्य, बट वील कम टू दैट आफ्टरवर्ड्स। दिस इज हाउ वी वॉन्ट टू नो, क्योंकि पहले जो हमें परिचित है जो वस्तु, हमारी जो फैमिलियल चीजें है, तो उससे हम पहले इसको सीखेंगे, देन वील अप्लाई टू वट एवर पुद्गल जीव धर्म अधर्म आगे। तो यहां जो है स्वभाव को हम देख रहे थे, स्वभाव कोई बना नहीं सकता है, वो अनादि से रहता है, अनंत काल रहता है, और स्वभाव में लिमिट नहीं होती, इट्स लिमिटलेस। जैसे हमारे पास मिरर है, मिरर का स्वभाव क्या है? रिफ्लेक्टिविटी। So how much can it reflect? Anything. Its nature is reflectivity. It can reflect anything and everything. So उसको कहते हैं स्वभाव में कोई लिमिट नहीं होती, वो अमर्यादित होता है। अपनी भाषा में क्या कहेंगे इसको? अमर्यादा एंड लिमिट, अमर्यादित लिमिटलेस. तो अभी जो हमने किस पर से बात आई थी कि वो किसका घात करता है, तो स्वभाव का घात करता है. तो क्या स्वभाव का कोई घात कर सकता है क्या नहीं है, इसको हम देखेंगे. जिसका घात हो सकता है उसको हम स्वभाव ही नहीं कहेंगे. स्वभाव किसको कहेंगे, जो उसमें है. अभी पर्याय ने अवस्था की बात हम बाद में सोचेंगे, पहले में पहले स्वभाव का घात नहीं होता. तो हम जीव के हम एप्लीकेशन अपने पर करना है. तो हमारा स्वभाव क्या है पहले में पहले ये निश्चित करना, जीव को जानना है. तो उसके नेचर क्या है, जीव का स्वभाव क्या, आप कोई कह सकेंगे? हाँ, ज्ञान और आनंद उसका स्वभाव है. तो उसका तो घात नहीं होता. फिर भी जो हम कहते हैं ना, ये घाती कर्म है. और यहाँ आपने लिखा भी है ज्ञानावरण नाम, यहाँ ऊपर लिखा है ना, ये शब्द कैसे तैयार हुआ है, ये घाती है ना, कोई तो घात करते हैं. तो उसके चार भेद बताए यहाँ पर, और पहला ही नाम यहाँ लिखा है ज्ञानावरण. तो ज्ञान के ऊपर आवरण करता है, ज्ञान का घात करता है, ऐसा कहेंगे वो इस वे ऑफ सेइंग. परंतु हमें क्या समझना है, स्वभाव जो है ना ज्ञान, तो ज्ञान स्वभाव है. उसका कार्य क्या है, जानना 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 जानना. ये कब से चल रहा है, अनादि से. कब तक चलेगा, अनंत काल तक. सिद्ध होने के बाद जानना जानना छूटेगा के चालू रहेगा?
चालू.
क्यों बहन, आप क्या कहती है, आपके माथे पर प्रश्न चिन्ह है. सिद्ध भगवान हुए, कल आपने देखा था उनका स्वरूप क्या बताया था, दो लक्षण बताए थे ना. सिद्ध कैसे है, वितरागी सर्वज्ञ है ना. सर्वज्ञ का अर्थ क्या है, सब कुछ जान रहे कि नहीं जान रहे. तो अभी एक बार जानकर छोड़ दिया क्या, चल रहा है जानना नहीं, पक्का आपको पक्का नहीं है, अंदर से चल रहा है पक्का नहीं आ रहा है ना. वो आएगा, क्योंकि हम अभी वस्तु का स्वरूप नहीं देख रहे. वस्तु है ना सभी द्रव्यों का, वो जब निश्चित करेंगे तो आप खुद उस पर डिसीजन तक आ सकेंगे. तो ये जो जानना जानना कार्य हमारा अनादि से चल रहा है अनंत काल तक, तो फिर हम आप क्यों सर्वज्ञ नहीं है, हमारा स्वभाव तो है ना पड़ा हुआ,
कर्म से बंधा हुआ है.
हाँ, बंधा हुआ है. परंतु अभी अवस्था में हम अल्पज्ञानी हैं. तो ये जो ज्ञानावरण कर्म यहाँ बताया है, अभी तो यहाँ निमित्त में, निमित्त की भाषा में हम कहेंगे तो सही, परंतु एक बात ख्याल में लेना, निमित्त से कार्य नहीं होता. अभी तो सुनना ही है, और उसको जो प्रूव करेंगे तो कालांतर से यथाक्रम से करेंगे. क्या कहा, निमित्त से कार्य नहीं होता. ये निमित्त क्या होता है, तो उसकी परिभाषा ऐसी, क्योंकि हमें तो ग्रंथों में क्या लिखा है उस पर से उसका स्वरूप जानना है. तो निमित्त उसे कहते हैं कि जो स्वयं तो कार्य रूप नहीं परिणमता. क्या कहा, हमें कुछ विशिष्ट कार्य यहाँ हम उसके बारे में सोचेंगे. जैसे मिट्टी का घड़ा बन गया, किसने बनाया, हु मेड द पॉट, पॉट मेकर है ना, कुम्हार उसको कहते हैं. तो कुम्हार ने बनाया, तो हमारी परिभाषा ऐसी है बनाने की, जैसे हमने सोना देखा था, तो हार रूप कौन परिणमित हुआ, जिसकी अवस्था है उसको उसका करने वाला हम कहेंगे. तो अभी मिट्टी स्वयं घड़े रूप हुई है, तो ये घड़ा जो कार्य है, तो हम अभी निमित्त की परिभाषा इसे कहेंगे. कुम्हार को निमित्त कहा हमने, तो निमित्त क्यों कहा, जो घड़े रूप तो नहीं परिणमा है. पॉट मेकर स्वयं पॉट रूप नहीं हुआ, पॉट में पॉट क्रिएटेड है ना, जो स्वयं कार्य रूप परिणमित नहीं हुआ है, वो स्वयं पॉट नहीं हुआ है,
सहायक हुआ.
हम ही उसके सहायक भी निमित्त को ही कहते हैं. उपकार कहो, उपग्रह कहो, ये सब निमित्त के शब्द हैं. तो जो स्वयं कार्य रूप यानी उस घड़े रूप नहीं हुआ है, परंतु घड़े के बनने में अनुकूलता का आरोप किस पर आया, कुम्हार. तो कुम्हार सेपरेट द्रव्य है, और घड़ा यानी मिट्टी वो सेपरेट द्रव्य है. तो अभी यहाँ आरोप आता है, उसको हम कहेंगे निमित्त. यहाँ जो कर्म की बातें है ना, ये पहले यहाँ ऑलरेडी निमित्त का विषय क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो तो आगे आने वाला है। जब हम कर्म की पूरी थियोरी सीखेंगे, कर्म है वो निमित्त है। ये कर्म कौन सा द्रव्य है हमने देखा था, छह द्रव्य के नाम मालूम है आपको? छह द्रव्य कौन कौन से? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इसमें से कर्म कौन से द्रव्य के अंदर आता है? ये कौन? अजीव। अजीव द्रव्य नहीं है ये, पांचों द्रव्य अजीव है, पुद्गल द्रव्य है। तो कर्म कम्स अंडर पुद्गल, तो वो तो है अचेतन द्रव्य, और उसने जीव को घात किया, ये कहना क्या होगा? निमित्त। हमें अभी इतना ही समझना है कि कर्म निमित्त है, और जीव की जो कोई अवस्था होती है वो जीव की उसमें होती है। अभी हमने सोना बंगड़ी रूप परिणमित हुआ, वो सोने की अवस्था है, और उसमें वो सुनार है, सोनी, आप जो कुछ कहते हैं वो उसमें निमित्त है। अभी ऐसा ही जीव स्वयं ज्ञान की हीन दशा रूप परिणमित हुआ है। जीव में कितनी शक्ति है? प्रत्येक जीव में केवल ज्ञान उत्पन्न होने की शक्ति है, एक समय का नहीं, क्योंकि हमने देखा है एक बार केवल ज्ञान होता है, अरिहंत दशा प्राप्त होती है, तो वो हर समय केवल ज्ञान, हर समय केवल ज्ञान। नया नया हो, क्यों नया नया? क्योंकि पर्याय पलटती है, हर समय चलती है, चलती है, चलती है, जानना 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 अनंत काल तक चलेगा। तो हमें, हमारे में इतनी शक्ति है कि हर समय केवल ज्ञान उत्पन्न होता रहे अनंत काल तक, तभी भी अपनी शक्ति थोड़ी भी कूटेगी नहीं। इतनी शक्ति अभी वर्तमान में हमारे पास है, फिर भी अवस्था में कैसे है? ज्ञान की हीन दशा चल रही है, तभी इसमें निमित्त कौन है? तो हम कहेंगे ज्ञानावरण कर्म, इसका उदय चल रहा है। तो क्या कहेंगे? ज्ञान का घात हुआ, परंतु ना ज्ञान गुण का घात हुआ, ना स्वभाव का घात हुआ, तो क्या हुआ? अवस्था में ये हीनी दशा है, पूर्ण घात भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जीव कितनी भी सूक्ष्म अवस्था में चला जाए, निगोद भी हो जाए, अभी निगोद का नाम नहीं सुना हुआ तो पृथ्वी का एक, जल का एक, वायु का एक, कोई भी हुआ हो, तो भी जानना 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 कार्य उसका चलता है। जानने का कार्य कभी भी रुकता नहीं है, कम जानेगा परंतु जानेगा तो सही। कोई भी जीव ऐसा नहीं है कि जड़ हो जाए, अचेतन हो जाए, ख्याल में? तो यहां ज्ञान की जो हीन दशा चल रही है उसमें निमित्त कौन है? तो ज्ञानावरण। अभी हम निमित्त को एक बार बोल के फिर उसको भूल जाएंगे, क्योंकि हम सारी जो हमें कर्म थियरी वो निमित्त की भाषा में ही कहेंगे। हम ऐसा ही कहेंगे कि ज्ञानावर ने जीव के ज्ञान का घात किया, और अरिहंत भगवान ने चार घातीय कर्मों का नाश करके वो जीव ने अरिहंत अवस्था प्राप्त की। कल बात आई थी ना, क्या बताया था बेन ने? चार घाती कर्मों का नाश किया। कौन से चार घाती कर्म यहाँ लिखे? देखो, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोनी और अंतरा। तो जो अरिहंत भगवान है उनके, उन्होंने ज्ञानावरण का नाश कर दिया, अनंत ज्ञान उत्पन्न हुआ। मैं पूछने वाली हूँ अरिहंत के चार गुण कौन से होंगे? हाँ, क्या कहा? ज्ञानावरण का नाश किया उन्होंने, तो क्या उत्पन्न हुआ? अनंत ज्ञान, जिसको हम केवल ज्ञान कहते हैं। दर्शनावरण का क्षय कर दिया, नाश कर दिया, तो क्या हुआ? अनंत दर्शन। मुनि में दो भेद हैं, कौन कौन से? दर्शन मुनि और चारित्र मुनि। ये दर्शन मुनि का नाश किया तो क्षय सम्यक तो प्राप्त हुआ, और चारित्र मुनि का नाश किया तो क्षय चारित्र, जिसको अनंत सुख कहेंगे अभी हम, और इसको मिलकर अनंत सुख कहेंगे, और अंतराय का नाश कर दिया तो अनंत वीर्य। तो हम कहेंगे अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य, और उसके चार घाती कर्मों का नाश किया उन्होंने। अभी हम कर्म की ओर से बात कर रहे हैं, कर्मों के नाम देख रहे हैं हम। तो घाती कर्म यानी जीव की पर्याय में उसके जो गुण है, गुण में जितनी शक्ति है वो पर्याय में प्रकट नहीं हो रही है, उसी को कहना घात किया। उसके कहने की पद्धति जो है ना, उसके हम अर्थ से देखेंगे तो हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि कोई परद्रव्य हमारा कुछ घात नहीं करता। ये जड़ अचेतन है, अभी हमने निश्चित किया था ये पुद्गल द्रव्य है, कर्म पुद्गल द्रव्य है, वो अचेतन है, वो अचेतन होते हुए जीव के चेतन का घात करे ये नहीं हो सकता, फिर भी अभी उसमें निमित्त है। क्यों? जीव स्वयं हीन ज्ञान दशारूप परिणमित हुआ है। वो भी क्यों हो रहा है वो हम सब देखेंगे, इसमें क्या क्या होता है और जीव क्या क्या कर रहा है। जीव पूर्ण स्वतंत्र है, बंधने में भी स्वतंत्र है, मोक्ष पाने में भी स्वतंत्र है। हमने अभी तक क्या माना है? कर्म के कारण हम दुखी है, हम मानते कि नहीं मानते? अरे क्या करें, हमारे आसाता का उदय आया है और हम अभी बहुत दुखी है, क्या करें, हमको कर्म को भोगना पड़ेगा। एक हम क्या इतने पराधीन है कि नहीं, इसके हमें निर्णय करना है, और पराधीन नहीं तो क्यों भोग रहे उसका भी निर्णय करेंगे। तो पहले में पहले वो कौन है उसको तो पहचानेंगे कि जो हमें तकलीफ दे रहे है, क्या वो सच में तकलीफ दे रहे है क्या नहीं दे रहे, उसको भी देखेंगे। तो ये जो जीव के ज्ञान गुण के घात में, अभी गुण को घातेंगे ऐसा कहेंगे भी, समझना क्या है हमको, पर्याय में उसकी पूर्ण ज्ञान की शक्ति प्रकट नहीं हो रही है, उसको हम कहेंगे ज्ञानावरण। दर्शन क्या होता है? ज्ञान के ये जानने का कार्य होता है, उसके पहले जो कोई पदार्थ हो उनके प्रति, अभी उसकी चर्चा बाद में करेंगे, इसको सामान्य अवलोकन कहते हैं। उसके होने में जो बाधक है कर्म, उसको कहेंगे दर्शनावरण। मोहनीय के दो भेद है, एक है दर्शन मोहनीय कर्म और एक है चारित्र मोहनीय कर्म। मोहनीय मोह ने कोई विपरीतता लाता है, कैसी? यहां जो दर्शन शब्द है और यहां भी दर्शन शब्द है, इस दर्शन का अर्थ है जानना, देखने वाला दर्शन। जब दर्शनावरण की बात आती है या ज्ञान दर्शन कहते हैं, यानी देखना जानना, ज्ञाता दृष्टा, वो वाला दर्शन ये है। और यहाँ जो दर्शन लिखा है उसका अर्थ क्या है? हाँ बोलो, श्रद्धा। हाँ श्रद्धा, श्रद्धा गुण की जो है ना, ये जो हम कहते हैं सम्यक दर्शन, मिथ्या दर्शन, ये वो वाला दर्शन है। यहाँ श्रद्धा में जो विपरीतता लावे वो दर्शन मोने। और चारित्र में विपरीतता क्या होती है? देखो चारित्र में स्वभाव क्या है? वितरागता। और चारित्र में विपरीतता क्या है? कषाय, राग द्वेष। तो राग द्वेष जो कराने में निमित्त है उसको कहेंगे चारित्र मोहनीय, और मिथ्यात्व कराने में निमित्त है उसको कहेंगे दर्शन मोहनीय। अभी तो स्थूल रूप से इतना ही देखेंगे। अंतराय के भी पांच भेद है, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। उसमें जो बाधा लावे उसको यहां कहते हैं अंतराय कर्म। तो अभी हमने घाती कर्म के चार नाम देखे, कौन कौन से? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतरा। मोहनीय के कौन से दो भेद देखे? दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। जिसका अभ्यास है वो तो फटाफट जान सकेगी, परंतु जिसको मालूम नहीं है शब्द, इसके लिए यहां लिखे। ये हुए घाती कर्म। दूसरे जो चार है उसका नाम है अघाती कर्म। अघात यानी यहाँ जीव के स्वभाव में कोई, जो पर्याय में जो कोई घात नहीं हो रहा, तो उसका फल क्या मिलता है? ये जो लिखे ना, उसके फल में क्या बातें होती है उसके अकॉर्डिंगली उनके नाम है। तो एक है वेदनीय कर्म, जिसका नाम तो हमने केम छो सातामा छो के नहीं हम पूछते ना। हाँ, तो वेदनीय के भी दो नाम है, एक है साता वेदनीय और एक है असाता वेदनीय। वेदनीय यानी वेदन करता है जीव। किसका वेदन करता है? सुखरूप वेदन करता है या दुखरूप वेदन करता है? ये वेदन जब कहते हैं ना सुखरूप वेदन, तो ये जो अतीन्द्रिय सुख है उसकी बात नहीं है, क्योंकि वो तो आत्मा में से उत्पन्न होता है और किसी कर्म के कारण सुख उत्पन्न होता ही नहीं है, परंतु जीव उसमें सुख की कल्पना करता है। तो ये जो पांचों इंद्रियों के विषय आदि जो है संयोग, तो ये संयोग मुझे अच्छे लगते हैं, ऐसी वो जीव की कल्पना होती है, तो हम कहेंगे ये वो वेदनीय का उदय, साता वेदनीय का। और संयोगों में जो जिसको दुखरूप फीलिंग होती है उसको क्या कहेंगे? असाता वेदनीय का उदय है। परंतु इसके लिए एक कंडीशन है, वेदनीय के उदय में यानी संयोगों में जिसको सुख हो और संयोगों में दुख भासित हो उसके लिए एक कंडीशन है। कौन सी? ये हो मोनिया, कि जो मिथ्यात्व और राग द्वेष हो तो ही संयोगों में सुख दुख भासित होता है, मिथ्यात्व के कारण। इसको कहते हैं मोह। मोह के प्रेजेंस में ही संयोगों में सुख या संयोगों में दुख होता है। तो मेरा प्रश्न है, कौन से संयोग अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं? हाँ, आप क्या कहते बहन? उन्होंने तो उत्तर दिया, आप आगे। हाँ, कौन से
संयोग बुरा नहीं है?
कोई संयोग बुरा नहीं है।
हाँ,
तो हम उसको क्यों बुरा कहते हैं? यही हमारा मिथ्यात्व, यही हमारा अज्ञान है। तो यदि अज्ञान न हो तो संयोगों में कुछ अच्छा बुरा नहीं लगता, क्योंकि देखो अज्ञानी को जो पहले गुणस्थान वाला मिथ्या दृष्टि, हाँ, उसको तो संयोगों से ही सुख मिलता है, संयोगों से ही दुख मिलता है, ऐसा वो समझता है। और फिर पूरी उसकी कोशिश कहाँ लगती है? संयोग को सुधारने। क्यों? इसको सुधार कर मैं सुखी हो जाऊंगा और सुखी हो जाऊंगा, ऐसा मानता है। वो सुधरते है कि नहीं, वो सुधरते उसके हाथ में है कि नहीं, वो बात अलग। तो ये इसमें सुख कब लगेगा? मोह होगा तो मोह के प्रेजेंस में संयोगों में जो सुख भासित होता है वो साता वेदनी का उदय कहेंगे। और मोह के उदय में संयोगों में जो दुख भासित होता है वो असाता वेदनी का उदय कहेंगे। देखो देखो, अभी यहां पंखा लगाएंगे, एसी, तो किसी को अच्छा लगेगा और किसी को, तो संयोग तो एक ही है ना। तो एक ही संयोग अच्छा होता तो सबको हम साता का वेदन करते, परंतु कोई साता का वेदन कर रहे हैं और कोई असाता का। तो हम कहेंगे जिसको अभी दोनों को ही, ये तो मोह है ही है, क्योंकि शरीर मैं हूं और उसके जो अनुकूल है वो अच्छा और प्रतिकूल है वो बुरा। तो ये जो साता और असाता वेदनी का उदय हम कब कहेंगे? मोह के उदय। वो वहां पंखा चलना या एसी का आना वो मोह वेदनी के उदय में नहीं होता है। संयोगों में अच्छेपने की बुरे की कल्पना होती ना, फिर भी हम ऐसा कहते हैं वेदनी के उदय में संयोग मिलते हैं। कहने की पद्धति है, हो क्या कहते हैं हम? अरे आपने बहुत अच्छा सब बनाया, यहाँ आके सेट लोग है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया किया, हमारे साता का उदय चल रहा है। अरे ऐसा कैसा चल रहा है साता का? ये पुण्य कर्म का उदय चल रहा है। तो पुण्य कर्म अच्छा के बुरा? अच्छा है ना। पुण्य कर्म कहां से आया? वहां पर हमारे स्टॉक में पुण्य कहां से आया? भगवान ने दिया कि नहीं दिया? तो
कर्म।
कर्म कहां से आया?
पुण्य
करने से आया। क्या किया था?
अच्छा किया तो अच्छा किया।
इन्हें शुभ भाव किया तो पुण्य बांधा, और पुण्य बांधा इसलिए अभी हम उसको भोग रहे हैं। तो हमने बंधे को अच्छा माना कि नहीं माना?
अपेक्षा से वो अच्छा भी है।
अपेक्षा से कहो, परंतु हमने उसको अच्छा माना कि नहीं माना? हम पाप की अपेक्षा से पुण्य को अच्छा मानेंगे करेंगे वो बात अलग है। हमको करने नहीं करने की बात नहीं, हमको सोचना है। हम कहते हैं तो हमें तो मोक्ष चाहिए है ना, और हम क्या मान रहे हैं? ये साता पुण्य का उदय चल रहा है। तो हमने पुण्य का बंध किया था, तो हमने जिसको संयोगों में रुचि, रुचि की बात है, संयोग नहीं होते है पुण्य का उदय नहीं होता वो बात नहीं है, पुण्य करने का निषेध नहीं है, परंतु ये हमने पुण्य बांधा था ना, इसलिए हम अच्छे अभी भोग रहे सुख। अभिप्राय में कहीं तो वो उसको बंधा अच्छा लग रहा है, बांधा था तभी तो उदय आए कि नहीं, और वो चाहता क्या है? मुझे मोक्ष चाहिए, यानी उसका कन्फ्यूजन चल रहा है। वो सात तत्वों की बात आएगी ना, ये बंध तत्व क्या होता है, मोक्ष तत्व, उसमें चर्चा करेंगे हम उसकी। तो ये हम अभी तो कर्मों के नाम ही देख रहे हैं, ये साता असाता वेदनी होता है। अब यहाँ क्या लिखा है? आयु कर्म, जो चार प्रकार के होते हैं, मनुष्यायु, देवायु, नारकायु और तिर्यंचायु। आयु यानी विशिष्ट उस भव में रहने की ड्यूरेशन, लाइफ स्पैन जिसको हम कहते हैं। ये आयु बनती है पूर्व भव में और बनती है एक ही भव के लिए, नेक्स्ट भव के लिए। ऐसे दो चार भावों की आयु अभी हम स्टोर नहीं कर सकते। जैसे पैसा हम इकट्ठा करते ना कि सात पीढ़ी भी खाए तो भी खूटे नहीं, ऐसे आयु पांच छह भाव की नहीं बांध सकते। नेक्स्ट एक की भाव की बांधी जाती, बाकी कर्म तो बहुत सागरों के चलते, मुनि है, ज्ञानावरण, ये सारे है ना, अनेक भवन भवन तक चलते ही रहते चलते रहते, क्योंकि वो बहुत लंबी स्थिति बनती है उसकी। आयु हम इस भव में जो हम भोग रहे हैं उसको कहते हैं भुज्यमान आयु। क्या कहा है तबे? भुज्यमान है जो हम भोग रहे हैं, और जो नेक्स्ट भव की आयु बांधेंगे उसको कहेंगे बध्यमान आयु। क्या कहा? बध्यमान आयु। तो अभी हमारी कौन सी आयु चल रही? उदय, मनुष्य आयु का उदय चल रहा है। और जो हम बांधेंगे देवायु वो क्या कहलाएगी? बध्यमान आयु। ये जो हम अभी वर्तमान में भोग रहे ना, जिसको कहेंगे हम मनुष्यायु का भोग रहे, हमारे सबके भी मनुष्यायु का उदय चल रहा है। ये आयु हमने कब बांधी थी? लास्ट भव में। तो तभी स्थिति बंद हुआ था कि नहीं? उसमें आयु में स्थिति बंधी थी। अब उस स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला, जितनी बांध कर आए हैं अभी यहां। वो बात मत निकालाओ कोई जल्दी मरता है कदली घात, उसकी बात बाद में करेंगे। हम तो सामान्य से अभी देखेंगे। अभी जो हम वर्तमान आयु भोग रहे हैं, मनुष्य आयु का अभी उदय चल रहा है, तो ये हमने बांधी थी पिछले भव में। जितने समयों की बांधी है वो एक समय भी कम ज्यादा नहीं होने वाला अब उसमें। फिर भी हम इंडिया से अमेरिका क्यों आते हैं ट्रीटमेंट के लिए? कोई तो हमारी आयु बढ़ा देगा, अपनी मान्यता में है कि नहीं? वो देखो, मैं ऐसा नहीं कहती कि आप कोई इलाज नहीं करना, ऐसे घर में बैठे बैठे रोग को यानी दवाई मत लेना, वो बात नहीं है। हमारी सभी जो बातें अपनी श्रद्धा में लेने की है, मूल बात हमारा अभिप्राय क्या है। अब उसकी आयु लंबी हो उसको भाव भी आएगा दवा खाने का, हॉस्पिटल में जाने का। कभी कभी घर बैठे भी आयु लंबी है तो बिना दवा खाते हुए भी जिएगा, क्योंकि कभी कभी है ना ऐसे कहते हैं अभी तो वी कैन नॉट डू एनी मोर, तो पेशेंट को घर ले जाते हैं और वो बचता है और सालों तक जीता भी है। तो ये जो आयु कर्म है वो पूर्व मोह में बंध के आया है, और वो उसकी स्थिति जितनी है उतनी रहती है। और उस समय पूरा हुआ, अभी आयु के परमाणु नहीं रहे, तो जब हम नेक्स्ट भव की आयु बांधते हैं उसका उदय चालू हो जाता है, तो जीव इमीडिएटली नेक्स्ट भव में उसके वहां की आयु चालू होती है, उसको मरने की भी फुर्सत नहीं है। वैसे आप जो कहते हैं ना ये स्वाध्याय विधेय कहां करें, हम इतने बिजी है, वी आर सो बिजी, हमको मरने की भी फुर्सत नहीं है। जैसे फुर्सत वाला ही मरता होगा ना, यहाँ क्या पद्धति, मुझे पता नहीं यहाँ कौन मरते हैं। और किसी चीज के लिए फुर्सत नहीं है, परंतु तो मरण जिस समय आना है वो तो आएगा ही है। हमारा नाम जीव क्यों पड़ा मालूम है आपको? नहीं मालूम? जीव का अर्थ क्या है? जो जीता है वो जीव। कब से जी रहा है? अनादि से। आज वर्तमान में भी जी रहा है, और कब तक जिएगा? अनंत काल। तो ये मरता कब है? कभी मरता नहीं। ये जो शरीर का संयोग उसको जन्म कहते हैं, शरीर के वियोग को मरण कह देते हैं, इसको कहेंगे उपचार। परंतु सच देखो, जीव तो वही का वही रहा ना। अभी हम मनुष्य आयु का उदय चल रहा है, मनुष्य आयु में है, हम मनुष्य कहला रहे हैं, परंतु हम है तो जीव। उसके बाद क्या होगा? मनुष्य आयु का वो अंतिम परमाणु खिल गया, फिर देवायु का चालू हो गई, देवायु चालू हो गई। एक समय के भी बीच में कोई गैप नहीं है, तो तब हम क्या कहलाएंगे? देव कहलाएंगे, ये स्वर्ग के देव। अभी क्या कहला रहे? मनुष्य। फिर कहलाएंगे देव। फिर वहां से कोई आएगा तीरंच में जाएगा, कोई फिर मनुष्य में आएगा, तो फिर उसको उस नाम से पुकारेंगे। तो जीव का तो जीव ही रहा ना, अब मनुष्य रूप से जी रहा है, तब देव रूप से जिएगा, कभी तीरंच रूप से जिएगा, कभी निगोद में जाएगा निगोद रूप से जिएगा। अब कोई तो मुनिराज हो गए, अरिहंत हो गए, सिद्ध भी हो जाएंगे, तो बाद में भी जिएगा के क्या होगा? जीव का जीना है ना जानना देखना, जानना देखना, जानना देखना चल रहा है, यही उसका जीव का लक्षण है। तो हम अनादि से जीते आ रहे, अब जी रहे और अनंत काल तक जीते रहेंगे। हमारा नाम ही जीव है, तो जीव कभी मरता ही नहीं है। फिर भी हम रोते हैं ना, किसके लिए? अपने लिए, कि मरता है उसके लिए क्यों? अज्ञान के कारण। शोक नहीं होगा वो बात नहीं, कोई हमारे संयोग में है उसका हमें वियोग हो जाता है, दुख होता है, परंतु दुख के पीछे यदि हमें ये पता है कि अरे ये अभी जीव है तो वो कहीं ना कहीं जन्मा है, अभी वहां की उसकी लाइफ शुरू हो गई है। आप यहाँ अमेरिका में आते हैं तो क्या आपके माता रोती रहती है, अरे वो कहाँ गई कहाँ गई, खलास हो गई, नष्ट हो गई? क्योंकि पता है यहाँ न्यूयॉर्क में है श्रुति, वहां अच्छे मजे में है ना। तो आई है बेटी छोड़कर जाती, उतना दुख होना अलग बात है, परंतु उसको पता है कि अभी वो कहीं ना कहीं है एग्जिस्टिंग। वैसे हमें पता है कि ये जो जीव है तो हमेशा ही रहने वाला है, तो आयु तो उस भव की उतनी होती है, आयु कर्म के निमित्त से उस काल तक वो जीव उस पर्याय में रहता है। ये है नाम कर्म। नाम कर्म के बहुत उसमें भेद है, जिसको 93 भेद कहे हैं, और भी उसके अधिक भेद भी होते हैं। तो उसमें तो मुख्यतः शरीर की रचना होती है, जैसे चित्रकार अलग अलग चित्र बनाता है ना, ऐसे उपमा दिए है। नाम कर्म के कारण शरीर की रचना होती है, कितने हाइट वाला होगा, कितना गोरा होगा, काला होगा, आंखों का कलर कैसे होगा। बेन जो हम सारे कहते हैं ये जीन्स है उसके, ऐसे ही। तो ये क्या है सारे नाम कर्म के अलग अलग भेद है। हड्डी कितनी मजबूत होगी और बहुत सारे उसमें वेरिएशंस है। सहनन कहते हैं, संस्थान कहते हैं, यानी आकार कैसा होगा उसका, स्पर्श कितना मुलायम होगा या कठिन होगा, या चमड़े होंगे, देखते ना ये सॉफ्ट स्किन कहते हैं हर किसी के। तो ये सारे ही बातें ये नाम कर्म के उदय में होती है। और एक है यहाँ गोत्र कर्म, नीच गोत्र और उच्च गोत्र। जैसे जीव ने परिणाम किए है और गोत्र बांधा है, वैसे उसका उदय भी आता है। तो हम कहेंगे इसने नीच गोत्र में उत्पन्न हुआ। इसे नारकी और तिर्यंच तो नीच गोत्री कहलाते हैं, मनुष्य में दोनों ही होते हैं और देव तो उच्च गोत्र वाले होते हैं। ये हम थोड़ी इसके जो हमने नामों की यहाँ देखी थी, ये जो प्रकृतियों के नाम हमने देखे थे, फिर रिपीट करेंगे हम, कौन पढ़कर बताएंगे यहाँ। कर्म के मूल दो भेद बताने आपको। हाँ बोलो बहन। कर्म के दो मूल भेद यहाँ लिखा है।
घाती कर्म और अघाती।
बहुत अच्छा, घाती कर्म और अघाती कर्म। अभी हम घाती कर्म के चार भेद समझेंगे। हाँ बहन आप पीछे बैठिए ना। हाँ
ज्ञानवाणी दर्शनावाणी मोहनी अनन्य।
बहुत अच्छा, क्या कहा श्रुति?
ज्ञानवाण्य कर्म दर्शनावाण्य कर्म मोहनीय कर्म।
ये सब कैसे है?
घाती
कर्म। अब अघाती कर्मों के नाम आप बताएंगे बहन? हाँ
वेदनीय कर्म, आयु कर्म, नाम कर्म और गोत्र।
बहुत अच्छा, ये सारे वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, ये जो कर्म है वो सारे कैसे? अघाती कर्म। ये तो बात बहुत आसान है। हाँ बोलिए। घाती है ना, घाती। हाँ सी, घाती मीन्स जीव के जो गुण है ना, गुण मीन्स जीव के कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स क्या है? ज्ञान यानी जानना, दर्शन यानी ज्ञान के पहले जो कोई उसमें परसेप्शन कुछ अटेंशन होता है वो देखना जिसको हम कहेंगे, तो उसमें उसका निमित्त बनता है उसके। अभी जो हम सर्वज्ञ तो नहीं है, कल देखा ना सर्वज्ञ भगवान सब कुछ जानते हैं, हम सब कुछ नहीं जानते। अभी हम यहां का देख सकते, ऊपर क्या है वो देख नहीं सकते आप, देर इज लिमिटेशन। तो उसमें क्या है, तो अभी हमारे ज्ञानावरण कर्म का उदय चल रहा है। तो घाती मीन्स जीव के जो कुछ गुण है उसकी शक्ति पूर्ण प्रकट नहीं हो रही अभी पर्याय में, अवस्था में, उसको कहेंगे घाती। अघाती क्या है? दीज आर ऑल संयोग, जिसको हम कहेंगे संयोग को क्या कहेंगे आप, ये पर जो हमारे जो बिलोंगिंग्स है। अटैचमेंट इज अवर फीलिंग। नहीं नहीं, बिलोंगिंग्स आपका घर है, संपत्ति है, ये सब संयोग है। तो उसमें उसका फल मिलता है। बिलोंगिंग्स आपके अच्छे हैं या बुरे हैं, सोल में उसका कुछ इफेक्ट नहीं होता है, जीव में उसका कोई इफेक्ट नहीं है। किस में है? परवस्तु में है। परवस्तु में अदर थिंग्स अदर देन सोल। आयु ये भी सोल नहीं है, क्योंकि सोल तो हमेशा ही है। आयु तो उसकी जैसे मनुष्य 100 साल का है, फिर देव में जाएगा, फिर तीयंच होगा, जो कुछ होगा। ये भी उसका फल किस में मिलता है? शरीर में, आयु में। नाम कर्म का फल किस में मिलता है? शरीर में। वो भी संयोग है, वो जीव नहीं है। और गोत्र उच्च नीच है, हम जिस कुल में जन्मते हैं वो भी दैट इज नॉट अस। सो ये जीव के गुणों में कुछ नहीं करता है, इसलिए उसको कहा अघाती। अघाती, घाती यानी घात करता है, और अघाती यानी हाँ, अघाती में कुछ जीव में कुछ नहीं करता, उसके फल सब बाह्य में मिलते हैं। इस तरह से इसके दो डिविजन्स हुए। हम उसके नाम पहले देख रहे थे यहाँ, घाती कर्म के नाम फिर दोहराते हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोनीय और अंतराय। और अघाती के वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र। देखो आप हिंदी नहीं पढ़ सकती कोई बात नहीं, जब हम बताते तो सुनना यार। हमने तो इतने भी देखे स्टूडेंट्स की वो अंधे है, कुछ भी नहीं देख सकते, फिर भी सुनकर पूरा याद करते हैं। ऐसे छोटी छोटी बच्चियां भी देखी हमने, तो डोंट वरी कि ऐसा नहीं फील करना कि मैं मुझे हिंदी नहीं आती है, मुझे कुछ नहीं समझूंगी, ऐसा कुछ नहीं। अरे महावीर भगवान तो सिंह थे ना, तो मुनिराज ने तो उनको कैसा उपदेश दिया होगा, वो सिंह और ये मुनिराज। हाँ तो उनको सम्यक दर्शन हुआ ना, आत्मदर्शन तभी हुआ था, तो उसकी चिंता नहीं करना हम। ये समझ में आई है? घाती अघाती, घाती के चार और अघाती के चार। हाँ, इसको कहते हैं मूल प्रकृति। प्रकृति का अर्थ क्या देखा? नेचर। उसके नेचर के अकॉर्डिंग उनके नाम है। और इसके ये मेन जो है, मेन डिविजन्स, ये है कर्म की मेन डिविजन्स, उसको कहते हैं मूल प्रकृति। क्या कहा उसको? मूल प्रकृति। और इसके और सब डिविजन्स हम बताएंगे तो उसको कहेंगे उत्तर प्रकृति। ये तो उसका नाम है स्पेसिफिक, आपको मालूम है ना, उत्तर प्रकृति होती है। हाँ, ये जो मेन डिविजन्स उसको कहेंगे मूल प्रकृति, और उसके सब डिविजन्स करेंगे पेटाभेद, उसको कहेंगे उत्तर प्रकृति। ऐसे हर एक की बहुत पेटाभेद है, उसके भेदों में अभी हमें नहीं जाना है। तो हमने तो चार प्रकार से उसके बंध देखे थे, कौन से चार प्रकार याद करेंगे पुनः फिर? हाँ, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। हमने उसके कारण भी देखे थे, प्रकृति और प्रदेश क्यों बनते हैं? योग से बनते हैं। और स्थिति और अनुभाग क्यों बनते हैं? कषाय से बनते हैं। अभी कषाय से बनते ये देखा, पर कषाय क्यों होते हैं? पूर्व कर्म के होते हैं। देखो ये मोनी कर्म है ना, उसमें दो टाइप देखे थे हमने। दर्शन मोनी के उदय में देखो तीन बातें होती है, एक पुराने कर्मों का उदय, उसी समय जीव भाव करता है और उसके कारण नए कर्म बनते हैं, ऐसा ही चल रहा है। और ये तीनों एट अ टाइम एक समय में होता है। फिर से पुराने कर्मों का उदय, हम मिथ्यात्व की बात करेंगे, मिथ्यात्व कर्म का उदय। कौन है मिथ्यात्व? ये दर्शन मोनी, वही कल्प्रिट है सभी कर्मों के बांधने में। वो कैसे बांधता है वो हम देखेंगे बाद में। पहले पुराना मिथ्यात्व कर्म का उदय चल रहा है, अभी जीव उस कारण क्या करता है? मिथ्यात्व भाव करता है। ये परिणाम है, ये जीव का परिणाम है। ये क्या था? कर्म का परिणाम था। कर्म में मिथ्यात्व का उदय, अभी जीव मिथ्यात्व भाव करता है तो क्या होता है? नया मिथ्यात्व कर्म का बंध होता है। ये कब से चल रहा है? अनादि से। उसमें से छूटने का मार्ग कहते ये बंध हुआ तो फिर उसका उदय आएगा ना, तो उदय उसका उदय यानी हर समय बंध चल रहा है, तो हर समय पुराने किसी न किसी कर्म का उदय भी चल रहा है, और हर समय जीव मिथ्यात्व राग द्वेष भी कर रहा है। तो मिथ्यात्व राग द्वेष कर रहा है तो आठों कर्म भी बंध रहे, उसका भी उदय चल रहा है। तो ये विशियस साइकिल उसका अनादि से चल रहा है। और हमें इस साइकिल से छूटना है तो उसका उपाय यहां हमें जिनागम में बताया है प्रत्येक अनुयोग में। तो पहले ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, उसकी पहले हम यहां इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, फिर उसका एप्लीकेशन कैसे करना और उसमें से क्या छूटने का मार्ग है उसकी भी हम यहां चर्चा करेंगे। अभी यहां अपना समय हो चुका है, बाकी बात हम दोपहर में करेंगे। बोलो 2400 भगवान की जय।